जो हम कीर्तन कर रहे थे इस समय सब मंजरियां राधा रानी के साथ छत पे हैं, चंद्रशाखा ऊपर टॉवर पे हैं और भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ गैया चरा के वापस आ रहे हैं और बलराम जी समझ गए हैं कि श्री कृष्ण राधा रानी के पास से जाना चाहते हैं, तो बलराम जी अपना रास्ता बदल लेते हैं। तो कुछ अन्य सखाओं के साथ बलराम जी गैया के साथ दूसरे रास्ते चले जाते हैं और सभी गोपियां जो हैं उनके प्राण छटपट आ रहे हैं श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से। तो सब कोई उस समय कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, वह आके श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं और एकदम प्राण निकलने को ही हैं, इस प्रकार से महसूस हो रहा है। लगभग मध्यान्ह लीला 3:36 से समाप्त होती है। उसके बाद जब राधा रानी वापस आती हैं घर में तो बहुत व्यथित होती हैं, बहुत रोती हैं और यही बोलती हैं कि ये रात क्यों नहीं हो रही है, ये दिन कभी खत्म नहीं होगा क्या। श्री कृष्ण विरह में छटपटाती रहती हैं, मंजरी हम लोग उनके साथ बैठ के उनके ऊपर चंदन भी लगाते हैं, चंदन लगाते ही एकदम सूख जाता है। तो प्रत्येक क्षण जो है एक एक कल्प के समान बीतता है, एक प्रत्येक क्षण हम ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बच्चे स्कूल से नहीं आते, 2 बजे की बस का टाइम है, तो 2:05 होते हुए क्या हो गया, कहाँ रह गए, इस प्रकार से मन में होता है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, इस प्रकार से चिंतन रहता है। उसी प्रकार से बस इंतजार करें कब आएंगे श्री कृष्ण के दर्शन कब होंगे। तो ललिता सखी देख के आती हैं बहुत दूर से, गैया जब इतनी सारी चलती हैं तो थोड़ी धूल उठती है, तो ललिता सखी देखती हैं हाँ धूल उठनी शुरू हो गई है, तो फिर वापस आके राधा रानी को बोलती हैं बस अब आने ही वाले हैं श्री कृष्ण। तो फटाफट सब ऊपर चले जाते हैं टॉवर पे दर्शन करने की लालसा से और राधा रानी को लाल रंग की साड़ी पहनाई जाती है उस समय, इसलिए कि बिल्कुल अलग दिखेंगे, श्री कृष्ण को भी राधा रानी को दर्शन करने में आसानी होगी। तो लाल रंग की साड़ी पहनाते हैं और राधा रानी ऊपर चढ़ के बोलती है तुम तो कह रहे थे कृष्ण आने वाले, कहाँ है कृष्ण। वो फिर एकदम प्राण जैसे अभी निकल जाएंगे इस प्रकार से उनका विवशता हो जाती है। तो श्री कृष्ण दूर से फिर प्रारंभ होते हैं दर्शन होने। जब श्री कृष्ण दर्शन कर रहे होते हैं तो राधा रानी के जो मध्यान्ह लीला के बाद जितनी थकान थी सब थकान जो है उसका उपशमन हो जाता है कि वो थकान खत्म होनी शुरू हो जाती है क्योंकि श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण रस स्वरूप हैं, तो रस का पान करते करते जो सारी थकान है वो जानी शुरू हो जाती है और श्रीमती राधा रानी निर्बाध एकदम एक तक नेत्रों से श्री कृष्ण के दर्शन कर रही होती हैं। श्रीमती राधा रानी क्यों कर पा रही होती हैं? क्योंकि श्री कृष्ण उनको नहीं देख पा रहे होते उस समय, तभी वो देख पा रही हैं एकदम श्री कृष्ण को निर्बाध रूप से एकदम, क्योंकि श्री कृष्ण जो है अभी नहीं देख पा रहे कि राधा रानी कहाँ है। फिर जैसे ही श्री कृष्ण दर्शन करते हैं राधा रानी के, राधा रानी तुरंत उनकी आंखें झुक जाती हैं और लज्जा के मारे वो भाग के पीछे होने को होती हैं। तो जैसे ही पीछे होती हैं श्री कृष्ण तो बिल्कुल उनके रूप माधुर्य में एकदम खो जाते हैं, उनके वस्त्रों से जो उनके भीतर के स्वर्ण कांति है, हेमांगी है राधा रानी गौरांगी, तो गौरांगी के जो लावण्य अंग प्रत्यंग से जो निकल रहा है कांति धारा निकल रही है और कांति धारा कैसे बदलती है, जिस प्रकार से राधा रानी में भाव बदल रहे हैं तो वो महाभाव का जो कलेवर है उसमें कांति धारा बदल रही है, तो झर 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 करके कांति धारा बह रही है और श्री कृष्ण वो देख रहे हैं और विशेषकर जब राधा रानी मुड़ती हैं तो कृष्ण राधा रानी के नितंबों के प्रति और आकर्षित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे मोड़ी पर मुड़ के एक बार रुक जाती हैं राधा रानी, फिर सोचती हैं एक बार फिर से दर्शन कर लो थोड़ा सा, फिर अपने नेत्रों कहती हैं कि थोड़ा सा अपना जिद त्यागो, में थोड़ा सा देख के दर्शन करके वापस हो। तो राधा रानी, कृष्ण तो एकदम राधा रानी की ओर देख रहे होते हैं, तो राधा रानी जैसे ही अपना कटाक्ष करती हैं, श्री कृष्ण उसी समय एकदम मूर्छित हो जाते हैं, मूर्छित अंग स्पंदन होना एकदम लगभग बंद हो जाता है कि बस अभी आनंद वैवस्य के कारण। आप ये सोचिए ना कि संसार में भी होता है, जब बहुत ज्यादा आनंद प्राप्त हो जाए तो कई बार हार्ट अटैक आ जाता है, व्यक्ति प्राण छोड़ देता है। तो जब इतना आनंद प्राप्त होता है महाभाव के कलेवर से, एक तो सबसे पहले राधा रानी ने उनको अपने दर्शन दिए बिल्कुल आईज वाइड ओपन, तो कृष्ण आकर्षित, जैसे ही वो पान करने लगे श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के मुख कमल का, तो राधा रानी पीछे हो गई, फिर वो लालच बढ़ गया। फिर जैसे ही राधा रानी ने उनको देखा, कटाक्ष किया और साथ में मृदुमंद हाथ से थोड़ा सा हंसी, तो कृष्ण बिल्कुल होश ही खो गए। यही बताया गया है राधा कृपा कटाक्ष में भी कि अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ 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 सुस्तनी प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। अशेष हाव भाव धीर, अशेष जिसकी सीमाएं नहीं, इतने हाव भाव हैं राधा रानी के, राधा रानी के अंदर में जो भाव उठते हैं उनके महाभाव का कलेवर है, कलेवर मतलब देह महाभाव से बना हुआ, उसमें वो व्यक्त हो जाते। तो प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण, अपने मंद हास्य से, जैसे राधा रानी ने अंतिम चीज क्या की थी जब कृष्ण मूर्छित होने लगे थे, मंद हास्य, पहले कटाक्ष फिर मंद हास्य, और कृष्ण कृष्ण ऐसे नहीं हुए, साथ में राधा रानी भी, दोनों मूर्छित होने लगे। अब आप सोचो कि मान लो इसी घर के ऊपर हम सब हैं, मंजरी और राधा रानी, और नीचे कृष्ण यहाँ गली से जा रहे हैं गायों के साथ अपने दोस्तों के साथ, और ये सब पड़ोसी भी सब जागे हुए हैं, और यहाँ बेहोश होके कोई गिरने लग जाए ऊपर, वो बेहोश हो जाए तो क्या हालत होगा, आप दोस्त लोग क्या करोगे, अरे उठो अभी रात को, रात को फिर तुम्हारा मिलन होगा, कुंज मिलन होगा, अभी 6 बज रहे हैं लगभग 5:45, कुंज मिलन होगा अभी, उठो उठो। तो जो मंजरियां हैं वो छत से राधा रानी को थोड़ा जगा के ठीक करके वापस ले आती है, और जो सखा है वो श्री कृष्ण को वापस चला के, नहीं तो सोचिए रोड के ऊपर गायों को चलाते चलाते कृष्ण ही बेहोश हो जाए। तो इस प्रकार से सेवा होती है, तो हमारे को हमेशा याद रखना है कि हम उनके साथ हैं, वो हमारी सखी हैं, वो भगवान नहीं है, सच्चिदानंद विग्रह तो हैं, सर्वज्ञ तो हैं, परंतु वो सर्वज्ञ सब भूल जाते हैं, भक्त की प्रेम चेष्टा देख के वो अपने सर्वज्ञता सब ज्ञान सब भूल जाते हैं। अरे आत्मा ही बेहोश नहीं होती तो सच्चिदानंद परमात्मा बेहोश कैसे हो सकते हैं, आत्मा इज ऑलवेज एक्टिव, तो परमात्मा बेहोश हो सकते हैं। ये है श्री कृष्ण का माधुर्य, ये है गोलोक वृंदावन, ये वैकुंठ नहीं है। तो यहाँ पे भगवान बेहोश भी होते हैं, वहां ये अपने होश खो बैठते हैं, इनको रास्ता भी नहीं पता चलता कई बार। ये है श्री कृष्ण, वो ये भगवान है सर्व कारण कारणम। तुम्हारे को अच्छी तरह समझना है कौन श्री कृष्ण है, कौन राधा है, हमारी क्या सेवा है, उस भाव को अच्छी तरह अंगीकार करना है। हमेशा हम इतने प्रश्न करते हैं अनेकों लोगों से अपने जीवन में, प्रश्नों का मूल में क्या छुपा हुआ है, हम जितने ही प्रश्न करते हैं जिज्ञासाएं करते हैं, क्या छुपा है उस प्रश्न के मूल में, कि हमें आनंद कैसे मिलेगा, खुशी कैसे मिलेगी। हम पैसे के संबंध में प्रश्न करते हैं, बिजनेस के संबंध में, परिवार के संबंध में, अगर ढंग से देखें तो इसमें से आनंद का कोई लेना देना नहीं है, देखा जाए तो ना पैसे से, ना बिजनेस से, ना परिवार से, इसमें आनंद का कुछ नहीं है। سیدھی سی بات ہے, جو شریر ہے دو چیزوں سے بنا ہوا ہے, سول اور باڈی. باڈی کے لیے مٹیریل ورلڈ ہے, سول کے لیے اسپرچل ورلڈ ہے. کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں, ہم نے جھگڑا بنا دیا سول کو ہم مٹیریل ورلڈ سے سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں. جو میٹر ہے اس کے لیے مٹیریل ورلڈ ہے, اور جو اسپرٹ ہے اس کے لیے اسپرچل ورلڈ ہے. اس میں کیا ڈیفیکلٹی ہے؟ ٹھیک ہے, اب بھگوان کے اس وشیش یوگ میں مہا پربھو کے اس میں ویرائٹی دے دی گئی ہے کہ آپ انیک رادھا رانی کی کلوز سیوا کر سکتے, انیتھا تو ویکنٹھ میں کیول داس سے دس کی پراپتی ہو سکتی ہے. تو ہم اتنی جگیاسائیں کرتے ہیں تو کیا جگیاسائیں ہونی چاہیے ہمیشہ؟ اگر واسطو میں خوشی چاہیے تو میں جگیاسا بتا سکتا ہوں کیا کرنے چاہیے, اگر واسطو میں چاہیے. نہیں تو ہماری پریوار دھندا اور سب جگیاسائیں تو نان اسٹاپ ہیں ہی. تین جگیاسائیں, رادھا کرشن اس سمے کہاں ہیں؟ پونے چھ بجے چھت پہ ہیں معلوم. اس سمے وہ کیا کر رہے ہیں اور میں ان کی سیوا کیسے کر سکتا ہوں, میں ان کو پرسن کیسے کر سکتا ہوں؟ میری سیوا کیا, سیوا کیسے ہمارے کو پتا چلے کیسے سیوا کرنی ہے؟ جو اس پرکار سے سیوا کرتے ہیں ان کی سیوا پریپاٹی جان کر وہ کیسے سیوا کرتے ہیں. تو ہم نے کس کی سیوا پریپاٹی جاننی ہے؟ راگاتمی کا بھکتوں کی, جو راگاتمی کا جو منجری ہے اشٹ منجری, روپ منجری, منجورالی منجری, رس منجری, رتی منجری, گن منجری, ولاس منجری, لونگ منجری, کستوئی منجری, جو پرمکھ آٹھ منجری ہیں, یہ کس پرکار سے سیوا کرتی ہیں؟ یہ سیوا پریپاٹی کو اس بھاو کو سمجھنا ہے ہم نے, اور اس بھاو سے ہم نے رادھا کرشن کی سیوا کرنی. سب سے پرمکھ کیا ہے؟ بھاو.
अतएव गोपी भाव करी अंगीकार, अतएव गोपी भाव करी अंगीकार, अतएव गोपी भाव करी अंगीकार. रात्रि दिने चिंते राधा कृष्ण रविहार, रात्रि दिने चिंते राधा कृष्ण रविहार, रात्रि दिने चिंते राधा कृष्ण रविहार, रात्रि दिने चिंते राधा कृष्ण रविहार. सिद्ध देह चिंति करे ताहाई सेवान, सिद्ध देह चिंति करे ताहाई सेवान, सिद्ध देह चिंति करे ताहाई सेवान. सखी भावे पाए राधा कृष्णेर चरण, सखी भावे पाए राधा कृष्णेर चरण, सखी भावे पाए राधा कृष्णेर चरण, सखी भावे पाए राधा कृष्णेर चरण. प्रमुख बात है अतएव गोपी भाव करी अंगीकार, इस भाव को अंगीकार करें अपने जीवन में. इस भाव की ओर हम जिस मात्रा में प्रलुब्ध होंगे, अट्रैक्ट होंगे और सेवा करेंगे, اسی ماترا میں ایڈوانسمنٹ ہوگی, سدھی ہوگی. اس بھاو کی اور اپنے آپ کو بھاو سے جوڑنا ہے ہم نے. جس ماترا میں ہم لوگ سیوا پریپاٹھی کو سیکھ پائیں گے اور ابھیاس کر پائیں گے, اسی ماترا میں ہمیں آنند کی انوبھوتی ہوگی. اب منجری جو ہیں وہ ہمیشہ رادھا کرشن کی سیوا کر کے ہی پورنتا سنتشٹ رہتی ہیں, ہمیشہ 24/7 رادھا کرشن کی سیوا کر کے سنتشٹ ہیں. वो कभी भी अपने उस ऊंचे पाए ऊंचे स्थान से एक कदम भी नीचे नहीं उतरती है। राधा कृष्ण की सेवा जो ललिता की शाखा है वो भी कृष्ण का अंग संग करना नहीं चाहती, राधा रानी ध्यान दीजिए राधा रानी की इच्छा से कर लेती हैं, वो बात अलग करना नहीं चाहती है। तो राधा कृष्ण की सेवा में वो रहती हैं, परंतु मंजरी कभी कभी ललिता विशाखा में नायिकत्व भाव आ जाता है, परंतु मंजरी वो कभी भी अपने स्थान से नीचे उतरती ही नहीं, इतना ऊंचा स्थान है। तो मंजरीज आर मंजरीज 24/7 24 घंटे हमेशा मंजरीज आर मंजरीज होंगी, वो राधा कृष्ण की सेवा में पूर्णतया संतुष्ट हैं। और अगर हमने भी खुश रहना है या हमने भी सिद्धि प्राप्त करनी है तो हमें भी इसी भाव में 24 घंटे रहना होगा, इसी भाव में रहने की आदत बनानी होगी। इस भाव में जो लोग रहते हैं उनके द्वारा ग्रंथ हमारे को प्राप्त हैं, उनके ग्रंथों से सेवा परिपाटी सीख के उसको प्रैक्टिस करना होगा रेगुलर, इसी अवस्था को जीवन मुक्त कहा जाता है। जीवन में रहते रहते इसी जीवन को जीते जीते मुक्त हो गए, मुक्त क्या हो गए, अपने भाव में स्थित हो गए, धीरे 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 करके हम भाव में स्थित होंगे प्रैक्टिस करते करते, इसी को कहा जाता है भूत शुद्धि। अभी ये जो हमारा पंचभूत का बना हुआ शरीर है, जब किसी को भूत चढ़ता है घोस्ट कहते ना ही इज घोस्टली हॉन्टेड, तो वो क्या करता है, घोस्टली हॉन्टेड बोला जाता है जब तो सारे वो कार्य करता है जो उसे नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो भूत जब किसी को चढ़ता है तो वो अननेचुरल कार्य करता है ना जो उसे नहीं करने चाहिए, उसी प्रकार से हम मंजरी हैं तो हम प्रैक्टिकली जो भी कार्य कर रहे हैं सोचिए क्या है, ये अननेचुरल कार्य जो भी हम कर रहे हैं, तो हमारे को भी वी आर ऑल्सो घोस्टली हॉन्टेड, भूत चढ़ा हुआ है, इसी भूत की शुद्धि करनी होती है, इसको कहते हैं भूत शुद्धि। जब हम अर्चन करते हैं शिव विग्रह की तो सबसे पहले भूत शुद्धि करनी होती है, भूत शुद्धि मतलब मैं कौन हूं, अपने स्वरूप का अच्छी तरह स्मरण करना और अपने स्वरूप से सेवा करना। विग्रह की चाहे नाम जप हो चाहे गायत्री हो चाहे कोई भी सेवा हो, हमें भूत शुद्धि परम आवश्यक है, नहीं तो नाम लेना इत्यादि अर्चन लाभप्रद नहीं होता पूर्ण रूप से, भूत शुद्धि परम आवश्यक है। हम नाम तो ले रहे हैं अच्छा ठीक है, नाम से सब प्राप्ति होगी, हाँ होगी, पर आप ये तो बताइए नाम कौन है और आप कौन है और आपका नाम से क्या संबंध है। नाम सर्वश्रेष्ठ है हाँ है, पर नाम है कौन, नाम कौन है, आपका किसी से संबंध ही ना हो तो आप उसको पुकारोगे कैसे। अगर कोई संबंध नहीं है तो कैसे पुकारेंगे बताइए, हम कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं हरे कृष्ण बोल रहे हैं, पर अगर हमारा कोई संबंध ही नहीं है उनसे तो हम क्या क्या बुला रहे हैं। जैसे यशोदा बुलाती हैं तो एक संबंध होता है कि नाम ले रही है तो एक फीलिंग्स के साथ नाम ले रही है, ठीक है। ललिता सखी बुलाती है तो एक अलग प्रकार से बुला रही है, रूपम मंजरी बुला रही है तो वो बिल्कुल अलग प्रकार से बुला रही है, सखा बुला रहे हैं कृष्ण तो नाम तो कृष्ण ही है, अक्षर तो वही है, कर श न शब्द तो वही है, परंतु फीलिंग्स बिल्कुल सबकी अलग अलग है क्योंकि सबका संबंध अलग अलग है। तो नाम कौन है हमारे लिए बताइए, नाम चिंतामणि फीलिंग ये वाला फीलिंग से ये वाला शो स्टार्टिंग से जो हम नाम ले रहे हैं तो ये वो नाम ही है जिसका नाम लेना, तो नाम ही तो हमारे मालूम होने ये है वो नाम है हमारे सामने, राधा अधर सुधा पान शालिन ऐसे कृष्ण की बात ना कर रहे हैं। अच्छा वो तो कृष्ण है, आप कौन हो, मैं मंजरी। इस ज्ञान के साथ आसक्ति युक्त होके जब हम भजन करते हैं तब हमें आनंद की प्राप्ति धीरे धीरे होनी शुरू होती है। नाम लेना है पूरी फीलिंग्स के साथ, बिना फीलिंग्स के हम जप करना शुरू करते हैं। पहले जप जिसका कर रहे हैं उसको बिठाएं तो सही, हृदय में उनका जप कर रहे हैं। जो गायत्री करते हैं पूरा, कई बार कृष्ण गायत्री होगी कृष्ण सामने ही नहीं आते, राधा गायत्री होगी राधा का चिंतन ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं। जिस मात्रा में स्वरूपावेश होगा उसी मात्रा में प्रगति होगी। तो हमारे को स्वरूप आवेश अपने आप होगा नहीं, ये करना पड़ेगा। जब चीज होनी शुरू हो जाए अपने आप, इसका मतलब बहुत अभ्यास हो चुका है। तो अगर नहीं हो रहा अपने आप तो इसमें कोई दुखी होने की बात नहीं, अभी हमारा उतना अभ्यास नहीं। अभ्यास करेंगे तो इसी जीवन में सब प्राप्ति हो जाएगी। रात्रि दिन चिंतन करना है राधा कृष्ण रवि हार, रात्रि दिन क्यों करना है रात्रि दिन चिंतन? कोई बहुत बड़ी बात है क्या? ये तो एक सदाचार है। सदाचार मतलब बोलते ना वैष्णव एटिकेट, एटिकेट मतलब सदाचार। सदाचार मतलब जो सदा आचरण करना हो, मंजरी का सदा आचरण क्या है? मंजरी बंद रहना है, मंजरी भाव में रहना है। तो ये हर समय राधा कृष्ण चिंतन करना मतलब सदाचार पालन करें और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कर रहे हैं तो हम वो असत विचार कर रहे हैं। सदा आचरण जो महापुरुष मन वाणी शरीर से जो कार्य करते हैं उसी का आचरण करना, उसी को हमको फॉलो करना। तो जो रूप मंजरी है, लवंग मंजरी, जो अष्ट मंजरी है प्रमुख, जिस प्रकार से उनकी जीवन है 24 घंटे, उसी प्रकार से हमने अपने आप को, अपने जीवन को मोल्ड करना। तो भाव परिपाटी को जानना और उसमें डूबना अति आवश्यक है, परमावश्यक है। और कोई बोले कितना समय लगेगा कोई भी चीज होने में, कितना देर लगेगा प्राप्ति होने में? जितनी मात्रा में हमारा लोभ होगा, जिस मात्रा में, उसी मात्रा में आपको प्राप्ति होगी। ये हमारे पे डिपेंड है कि हमें पता चल गया क्या करना है। तो जिस मात्रा में हम लोभ करेंगे उस भाव के प्रति, समय जो है वो हम डिसाइड करेंगे कि हम कितना जल्दी लोभी हो रहे हैं। भाव अवेलेबल है, राधा कृष्ण अवेलेबल है, और हमको उसमें अपने स्वरूप में जाके बस सेवा करना है। लोभ कैसे आता है? लोभ आता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है गुरु कृपा से, फिर और क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, कहीं पे भी लोभ मिले अगर राधा कृष्ण के प्रति आकर्षित होने लोभ कहीं पे भी मिले किसी प्रकार से, तो कोई भी कीमत दे के हमें वो प्राप्त करना चाहिए। कोई भी कीमत अदा करनी पड़े हमें अदा करनी चाहिए अगर लोभ प्राप्त हो रहा है। क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, कहीं पे भी प्राप्त हो रहा हो लोभ तो वो हमें कीमत अदा करने के लिए तैयार रहनी चाहिए। कोई कीमत इतनी बड़ी नहीं है अगर हमें लोभ प्राप्त हो जाए राधा कृष्ण का प्राप्ति। हम जो भी साधना कर रहे हैं इस भाव के प्रति लोग आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं है। जो भी साधना है बस ये भाव के प्रति लोभ हो जाए, बस यही सिद्धि है। जो सिद्ध व्यक्तियों का जो जीवन है हमारे को उसको फॉलो करना है, बस हमारी साधना क्या है? जो उनकी सिद्धि है, जो रूप सनातन की सिद्धि है वो हमारी साधना है। गोल हमेशा अपने सामने रखना है कि हाँ मैं, मुझे मंजरी बनना है, मुझे हर समय मंजरी भाव में रहना ही रहना है, रहना ही रहना है। व्यवसात्मी का बुद्धि एकदम फोकस्ड रहना है, फोकस ऑल हर समय फोकस, मुझे मंजरी भाव में स्थित रहना ही रहना है। और इस प्रकार से होंगे तो घर में भी एक दूसरे के प्रति भोग भावना नहीं होगी। पत्नी सोचेंगे अरे मैं भी किंकरी हूं, ये भी किंकरी है राधा रानी की, तो भोग भावना कैसे होगी? दो किंकरियां रूप मंजरी की, मंजुलाली मंजरी के प्रति क्या भोग भावना होगी? संभव ही नहीं है। और अगर जो पत्नी हो वो पुरुष हो, अपने पति को कैसे देखेंगी? ये भी महाप्रभु के दास है, मैं भी महाप्रभु के दास हूं, तो दो दासों के बीच में कोई भोग भावना होगी नहीं। वो महाप्रभु के दास है वो किंकरी, कोई भोग भावना नहीं होगी। तो मंजरी भाव में रहेंगे तो कितना पीसफुल रहेगा सब कुछ। इस भावना से हटे कि असत में फंसे, असत सदाचार मतलब सत आचार, सत हमेशा जो आचरण करना हो, सद आचार, इससे हटे तो क्या हो गया, असत आचार। ये जो भाव है, मंजरी भाव हो चाहे सखा भाव हो, कोई भी भाव हो, ये नित्य सिद्ध भाव है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबूल, ये नित्य सिद्ध भाव है। कृष्ण प्रेम जो है नित्य सिद्ध है, ये बस श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय, हमारे को इस भाव के प्रति जितना आकर्षित होंगे उतनी जल्दी उदय हो जाएंगे। ये तो है ही, एग्जिस्ट कर रहे हैं हम, जितनी जल्दी आकर्षित होंगे ये हमारे उदय में उदय हो जाएंगे, बस सारा कुछ नहीं है एकदम, कितना सिंपल है ना सब कुछ। अब हम खुद सोचना चाहिए कि हम जो है आस्वादन करना चाहते हैं सबसे ऊंचा महाभाव, राधा कृष्ण की लीलाओं का हम आस्वादन करना चाहते हैं, तो वो कौन से देह से संभव है, कौन से देह से, फिर महाभाव के देह से ही संभव है वो। तो महाभाव का देह जो मंजरी देह जो है उसी देह से ही हमारे को चिंतन करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, तो ही तो आस्वादन प्राप्त होगा। तो इस ये स्वरूपावेश होना करना कितना आवश्यक है। जिनको प्रणाली प्राप्त हुई है सिद्ध प्रणाली, तो वो प्रणाली के अनुसार कर सकते हैं, जिनको नहीं भी प्राप्त तो भी कोई चिंता नहीं है बिल्कुल, वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से चिंतन कर सकते हैं। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं कि बिना सिद्ध प्रणाली के भी उन्होंने इतना प्रगाढ़ चिंतन किया कि सारे के सारे उनको अपना एकादश भाव सब पता चल गया, उसके बाद दीक्षा हुई और गुरु जी ने सारे के सारे वही, वो तो मुझे पहले से ही पता था। ऐसे होता है कि पूरा प्रगाढ़ चिंतन है, वो एक वो फॉर्मेलिटी मिल गई कि हाँ ये तो यही तो था सब कुछ। तो जिनकी प्रणाली नहीं भी है वो भी पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिनकी है तो उनके तो अच्छा ही है। बात ये नहीं है कि हमें प्राप्ति क्या होगी, ये हमें चित्त पे प्राप्त हुआ है, चित्त पे प्राप्त होना ये है मेन बात, ये भी चित्त पे है, चित्त पे तो सब प्राप्त हो जाएगा। परंतु जो विनम्र होकर जब हम सेवा नहीं करेंगे तब तक वास्तविक प्राप्ति नहीं होगी। एक और बात ये है, मानस संघ जो हमने मानस सेवा करनी है, जो फिजिकली अगर हम सर्विस नहीं कर पा रहे ग्रॉस, ये तो सबसे सटल है, सूक्ष्म है ये सेवा करना मानस सेवा, तो जब हम ग्रॉस लेवल पे अगर हम सेवा ढंग से नहीं करेंगे तो उस मानस सेवा के स्तर पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे सही रूप से। तो इसलिए हमारे को अपने जीवनचर्या में प्रैक्टिकल लाइफ में सेवा को सबसे इंपॉर्टेंस देना है। ग्रॉस देखिए, ग्रॉस में क्या है, धन शरीर, ये जिस मात्रा में हम लाएंगे उतने मात्रा में आसान हो जाएगा मानस सेवा करना, कि सेवा में बहना शुरू होएंगे ना हम। अगर हम ग्रॉस को ही नहीं लगा पाए सेवा में तो सबसे सटल तो कैसे लगा पाएंगे। मन तो वो है जो अर्जुन के कंट्रोल में भी नहीं होता, अर्जुन ने बोला मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूं मन को नहीं। वो इंद्र के स्वर्ग में गया था जब, तो अर्जुन मेनका उर्वशी अप्सराओं से वो आकर्षित नहीं हुआ था, इतना मन कंट्रोल में था। वो व्यक्ति बोल रहा है मैं मन को वश में नहीं कर सकता, उर्वशी की ओर आकर्षित नहीं हुआ था। भगवान कह रहे तुम ठीक कह रहे हो, बहुत मुश्किल है मन को कंट्रोल करना, पर कैसे करो, अभ्यासेन तो कौन से है वैराग्यन च गृह्यते, तुम ऐसे करो मन को कंट्रोल, ऐसे अभ्यासेन तो कौन से है, क्या अभ्यास करो, मंजरी भाव साधना का और वैष्णव सेवा, ये इसे कहते हैं अभ्यास। वैराग्य किन चीजों से, इन दो चीजों से, सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति मत करो, वह स्थूल इंद्रिय तृप्ति मत करो, इससे वैराग्य करो, इनका अभ्यास करो, यही साइंस है। तो हम जिस मात्रा में फिजिकली सर्व करेंगे, गुरु वैष्णवों की सेवा करेंगे, वह मंजरी भाव साधना करेंगे, उस मात्रा में मंजरी भाव साधन परिपाटी सुनेंगे समझे, उस मात्रा में हम कर पाएंगे सेवा, अदरवाइज इसे शब्द रह जाएंगे और हम फ्रस्ट्रेट रहेंगे। यदि हम सब धन है और तन है, ये तो सबसे, ये तो हम मन नहीं भी रखता, तन और धन तो कभी भी लगा सकता है कोई व्यक्ति चाहे तो, मन लगाना मुश्किल है ना। भगवान ने ये बोला, हाँ मन, ये नहीं बोला कि की धानिया तन लगाना भी मुश्किल है। वो तो हम बेड के ऊपर ही लेटे रहते हैं 10-10 घंटे, इतनी जल्दी कहीं पे भी लगा देते हैं। तो जो ग्रॉस सेवा नहीं कर सकता वो मानस सेवा कभी नहीं कर पाएगा, मतलब कभी सिद्धि नहीं मिलेगी, मतलब कभी सुखी नहीं होगा। तो ग्रॉस सेवा को अच्छी तरह से करें, पूरे हृदय से मन निविष्ट करके, निविष्ट एब्जॉर्ब करके, किस लिए, ये जान के कि ये मेरे को मंदिर स्वरूप प्राप्ति के लिए ये मेरा एक साधन है, ये जो मैं सेवा कर रहा हूं इससे मेरे को मंदिर स्वरूप प्राप्ति में बहुत आसानी होगी। इस प्रकार से हमें जान के कि मेरा लाभ है इसमें, और सबसे बड़ी बात है ऐसा नहीं कि मैं राधा रानी को चाहती हूं, अरे राधा रानी मुझे बहुत चाहती है, ये सबसे बड़ी बात है। मेरे अभिष्ट मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लव जो है एक वन साइडेड अफेयर नहीं है यहाँ पे कि हम ही प्रेम कर रहे हैं उनसे, ना, उनका प्रेम हमारे से बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि 1 मिलियन मंजरी उनमें से मैं खड़ी हूं लाइन में, अरे नहीं नहीं नहीं, एक आप और एक वो, बस हमारा लोभ है तो वो हमेशा अवेलेबल है। वो कह रहे हैं तुम अवेलेबल हो मैं तो हूं, आर यू अवेलेबल, हम बोल रहे हैं आर यू अवेलेबल, वो कह रहे हैं हाँ हाँ मैं हमेशा अवेलेबल हूं। सेम क्वेश्चन तुमसे पूछूं, आर यू अवेलेबल, मैं सुबह 6 to 8 जब करते समय अवेलेबल हूं और रात को 1 घंटा रीडिंग, उसके अलावा ऐसे नहीं होना, आई एम ऑल्सो अवेलेबल 24/7। राधा रानी हमसे पूछे तो क्या बोलेंगे, वो बोले आर यू अवेलेबल, फिर यही एक सिंपल क्वेश्चन पूछे, आर यू अवेलेबल सेवा मंजू, आर यू अवेलेबल फॉर सम सेवा। आर यू अवेलेबल रियली, ओके आई एम ऑलवेज अवेलेबल। फिर हम चिंतन करेंगे, चिंतन से अनुभव होगा, चिंतन से अनुभव होगा, अनुभव चाहिए वो चिंतन से होगा। चिंतन कैसे, सिद्ध देह, सिद्ध देह से चिंतन करो, उससे अनुभव होगा। उदाहरण दिया कैसे चिंतन करें, श्री कृष्ण ने वंशीनाद किया है, जब कृष्ण वंशीनाद करते हैं तो सब आकर्षित होते हैं, कृष्ण का जो वेणुनाद है वंशीनाद है वो सर्वचित्त आकर्षक है, सभी प्राणियों के चित्त को हर लेता है, और किस मात्रा में हरता है, जिस मात्रा में प्रेम होता है, जितनी मात्रा में प्रेम उतनी मात्रा में हरण हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका चित्त हरेगा, राधा रानी का। जब वंशीनाद होता है तो गोपियां जब रास के लिए पुकार होती है वंशी के द्वारा, तो गोपियां क्या करती हैं, तुरंत दौड़ना शुरू हो जाती है। राधा रानी का क्या होता है, यही होता है जो जैसे स्तंभ भाव हो जाता है, इतना प्रेम है कि वो मंत्र मुग्ध हो जाती है, एकदम स्तंभ वंशीनाद से। अभिसार के लिए कृष्ण पुकार रहे हैं, पर किस जिनको पुकार रहे हैं वो स्तंभित हो गई, जड़ता को प्राप्त हो गई, अष्टसात्विक विकार में से स्तंभ, वो स्तंभ हो गई है बिल्कुल, और हम उनके साथ खड़ी हैं। हमें भी पता है कि पुकार रहे हैं श्री कृष्ण राधा रानी को, तो अब क्या करें, तो राधा रानी मूला शक्ति है, सारी शक्तियों में सबसे कृष्ण की सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति राधा रानी है, हलादनी शक्ति स्वरूपा है, तो मूला शक्ति क्या हो गई है, चमत्कृतांगी हो गई है, चमत्कृत हो गई है। रस का क्या एक फीचर होता है, रस रसो वही सह रस, रसे सह चमत्कारो यम बिना ना रसो रसः, इसका मतलब है रस वो है जिसमें चमत्कार हो जाता है, बिना चमत्कार के रस रस नहीं है। हमें जो चीज की प्राप्ति चाहिए रस आनंद, वो ऐसी चीज है जिसमें चमत्कारित्व होता है, हमेशा लगता है ये पहली बार हुआ और चमत्कार, जैसे किसी को अचानक चमत्कार होगा तो क्या करेगा, ऐसे करेगा ना, चमत्कार हो गया बिल्कुल। तो वैसे राधा रानी को जैसे वंशीनाथ सुनाई दिया तो क्या हो गया, वो पूरे अंग उनके चमत्कृतांगी, बिल्कुल अंदर के जो चमत्कार है रस, रस कहाँ पे अनुभूति होती है, भीतर में, वो बाहर प्रकट हो गई बस। चमत्कृतांगी, हेमांगी, गौरांगी, चमत्कृतांगी, चमत्कृत अंगों वाली, चमत्कृतांगी, चमत्कृतांगी हो गई। फिर क्या हो गई, विह्वल अंगी हो गई, विह्वल एकदम, विवश अंगी, विह्वल अंगी, विवश हो गई, अब कुछ कर ही नहीं सकती, जड़ता को प्राप्त हो गई। जैसे जमुना बह रही है, जब वंशी बजी जमुना बहनी बंद, और जो पक्षी थे वो चोंच जो उनकी थी वो ऐसे वो फंसे रह गए। सोचो बर्फ में अगर जम जाए तो चोंच, पहले पानी पी रहा हो पक्षी, वो पानी जम जाए, ऐसे हो जाता है। ब्रज ये है स्थान जहां स्थावर जंगम को प्राप्त होता है, जंगम स्थावर को प्राप्त हो जाता है, ऐसा स्थान। जो जमे हुई चीजें हैं वो पिघलनी शुरू हो जाती हैं, और ये चलते जो जो जीव हैं वो स्तंभ हो जाते हैं, ये है ब्रज। अब राधा रानी को अभिसार के लिए पुकार हो रही है, और राधा रानी एकदम स्तंभ हो गई है, और अब मंजरी साथ में बैठ के देख रही है। तो मंजरी फिर क्या करती है, मूला शक्ति के अंदर जिनकी शक्ति से हमारे को शक्ति प्राप्त है कुछ करने की, उस शक्ति, उस मूला शक्ति में शक्ति का संचार करती है। आप सोच रहे हो, देखो राधा रानी महाभाव का कलेवर हैं, दे हैं, उनके चरण कमलों से महाभाव की अजस्र धारा बहती रहती है, और जब तक उस महाभाव का एक कण हमारे हृदय को नहीं छुएगा तब तक हमें सिद्धि, गोपी भाव में सिद्धि प्राप्ति नहीं होगी। तो वो महाभाव हमारे को छूता है जरा सा, महाभाव जरा सा छूता है तो हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और वो महाभाव की स्वरूपा कौन है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक का बुना है, वो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम जो है वो महाभाव का एक कणिका हमें प्राप्त हो जाए तो हम, हमारी सिद्धि हो गई। और उस जो महाभाव का स्वरूप है वो मूला शक्ति जो है उसमें हम शक्ति संचार करते हैं। आप सोच रहे हैं, मूला शक्ति जिसको वो पता है क्या मूला शक्ति है, मूला शक्ति वो ऐसी है कि अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्री जा पुलो मजा विरिंचि जावर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी जो लक्ष्मी है वो पूजा करती है राधा रानी की, ये मूला शक्ति है। वैकुंठ कितने हैं, अनंत, तो अनंत कोटि वैकुंठों की जो स्वामिनी है वो राधा रानी की पूजा करती है। और राधा रानी वर किनको देती हैं, इंद्राणी, हिमाद्रिजा, हिम क्या, हिमालय, पार्वती, पार्वती को वर देती हैं, विरिंचिजा सरस्वती को वर देती हैं, पुलोमजा इंद्राणी को वर देती हैं, ये मूला शक्ति हैं। यही नहीं, आगे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत पदांगुली नखे, अपार सिद्धियां जिनके नाखून के जरा से हिस्से से अपार सिद्धियां रिद्धियां निकलती हैं, हर चीज की प्रदान करता मूला शक्ति, कृष्ण कृष्ण हो कृष्ण मूल शक्ति, कृष्ण शक्तिमान, राधा मूल शक्ति, उस मूल शक्ति क्या हो गई है, विवश अंगी हो गई है। और मूल शक्ति में शक्ति का संचार मंजरी कैसे करती है, कृष्ण लीला का गान करके। जब कृष्ण लीला करते हैं तो मंजरी क्या करती है, अपनी प्रेम तुलिका से, प्रेम के कलम से, अपने हृदय के पत्र पे वे अंकित कर लेती है, यानी कि हम अंकित कर लेते हैं। और इस प्रकार से लीला को सुनाते हैं कि राधा रानी को ऐसे लगता, समझ नहीं आता कि वो लीला सुन रही है या लीला देख रही है। इस प्रकार से मंजरी शक्ति का संचार करती हैं और राधा रानी के मन व इंद्रियों को योग्य बनाती हैं कृष्ण के साथ अभिसार करने में, निकुंज जाने में। ये मंजरी की सेवा है, धन्य है ऐसी सेवा, धन्य है ऐसा राधादास्य, धन्य है ऐसा राधादास्य, कौन आकर्षित नहीं होगा इसके प्रति। अरे मूला शक्ति में शक्ति का संचार कर रही है मंजरी। तभी तो प्रबोधानंद सरस्वती हो या कितने भगवान के अन्य पार्षद हों, वो भी इस राधा दास्य के प्रति इतना आकर्षित होते हैं, इतना आकर्षण है इस राधा दास्य में। योग्य बना रही है राधा रानी को किस लिए? अभिसार करने के लिए। तो हम तो राधा रानी से यही प्रार्थना कर सकते हैं, जप करते हे राधा रानी अभी आप मुझे योग्य बनाओ, जब आप मुझे योग्य बनाओगे तो फिर मैं आपको योग्य बनाऊंगा, क्योंकि आपने तो स्तंभ भाव को ग्रहण करना ही करना है, वंशी बजी की आप स्तंभित हो गई, अब कोई तो चाहिए होगा सेवा करने के लिए। तो ऐसे संबोधन करें, हे नव कुंज नागरी कृपा मुझ पे कृपा करें, कृपा कटाक्ष भाजनम, हे नव कुंज नागरी। इसका मतलब कैसे संबोधन कर रहे हैं? ये नहीं बोले राधा, ये बोला हमने राधे नहीं, हे नव कुंज नागरी। कृष्ण सेवा का पक्ष दिखा रहे हैं राधा रानी को हम, कि कुंज में विहार करने वाली हे नागरी शिरोमणि, ओ द सुप्रीम मोस्ट हीरोइन, ओ बिलवेड ऑफ कृष्णा, जो कुंज में विहार करोगी तो आपको कुछ सेवा की जरूरत होगी। हे नव कुंज नागरी कब मुझे सेवा में लगाओगी? इस प्रकार से राधा रानी को संबोधन कर रहे हैं, कृष्ण सेवा का पक्ष दिखा गए, अपना पक्ष या उनका पक्ष नहीं दिखा रहे, कृष्ण सेवा का पक्ष होगा तो राधा रानी कुछ भी करेंगी। राधा रानी कृष्ण सेवा के लिए कहती हैं कि अगर श्री कृष्ण कोई स्त्री पसंद हो और वो स्त्री ना मान रही हो कृष्ण का संग करने के लिए, तो मैं उसके पांव में पड़ के उससे भीख मांग के बोलूंगी कि तुम कृष्ण का संग करो, और ये करने के लिए मैं तुम्हारे जीवन भर के लिए दासी बन जाऊंगी। ये राधा रानी। तो हम इसलिए बोले हे नव कुंज नागरी, जब आप कुंज में विहार करोगी तो आपको अनेक प्रकार की बाधाएं आएंगी कि नहीं आएंगी बताओ? पहले तो आप स्तंभ हो जाओगी सर्वप्रथम, और दूसरा अब गुरुजन हैं, घर वाले हैं, वो उनके प्रति आपको भय लगेगा, भय भी तो आपको लगेगा, तो हेल्प कौन करेगा आपको? मैं आपको हेल्प करूंगा। फिर राधा रानी पहले तो स्तंभ हो गई, उसके बाद राधा रानी से हम ये प्रार्थना करें, जब करते हैं सब जब करते हुए करना है, हम योगी नहीं है कि चिंतन कर रहे हैं ना, जब करते हुए करना है सब कुछ। लीला चिंतन, लीला चिंतन जो है ऐसे नहीं कि सिर्फ बैठ के चिंतन कर रहे हैं, वो होगा नहीं। कीर्तन प्रधान अंग है कलयुग में, इसको करते हुए करना है। अब राधा रानी बाहर निकलने लगे हैं घर से, तो देख रही हैं गुरुजन सब सो गए हैं ना, हे राधे चलो तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ, सब सब सो गए। अच्छा एक और बात सुनो, डर लगे ना तो मेरी ओर देख लेना, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना मैं हूं ना, आई एम अवेलेबल, मैं हूं, आई एम विद यू, डोंट वरी। बताओ जो सबको अभय प्रदान करती हैं उनको अभय प्रदान कर रही है मंजरी, जो सबको अभय प्रदान करती हैं। प्रेम का एक लक्षण राधा रानी प्रेम स्वरूप है, और प्रेम का तो लक्षण जिसको प्रेम प्राप्त हो जाए उसे डर नहीं लगता, मतलब राधा रानी का एक कर्ण भी प्राप्त हो जाए जिसको उसको डर नहीं लगता, तो वो मूला शक्ति को अभयदात्री बना रही, मैं तुम्हारी अभयदात्री हूं, उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, बस मेरे को मेरी उंगली पकड़ के चलते रहो। ये मधुर सेवा है, ये रहदास्य है। और एक बात कि हमें जो है ये नहीं सोचना कि बस हे राधा रानी अपने दर्शन दो, ना 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 ना, हमें राधा रानी और युगल का पंचेंद्रियों से, पांचों इंद्रियों से आस्वादन प्राप्त करना, पंचेंद्रियों से। जैसे जब राधा कृष्ण निकुंज में होते हैं तो जो बातें करते हैं, जो रसालाप होता है, वो नहीं होता जो सखियों के साथ होता है, वो बिल्कुल अलग स्तर पे होता है, बिल्कुल क्लोज एकदम, इसको कहते हैं रह गोष्ठी, जैसे होता है ना रहदास्य, वैसे रह गोष्ठी, सरस होती है एकदम, परम सरस, जिसे कहते हैं नो होल्ड्स बार्ड, एकदम हृदय की बातें एक दूसरे से कर रहे हैं राधा और कृष्ण दोनों। ललिता विशाखा के सामने क्यों नहीं कर सकते? वो इतनी गुप्त गोष्ठी होती है, इतनी गुप्त वार्तालाप होती है कि ललिता विशाखा के सामने भी नहीं होती, सिर्फ राधा व कृष्ण। और मंजरी तो होती ही है, क्यों? क्योंकि अभिन्न प्राणा मानती है, तो राधा कृष्ण ही है मंजरी के होते हुए भी, केवल मंजरी को आस्वादन मिल रहा है, ये उनकी कृपा है। मंजरियां राधा रानी की इच्छा शक्ति का ही विकास है, उनकी इच्छा से है निकुंज में, ऐसे नहीं है, उनकी इच्छा है, अभिन्न प्राणा है। साथ में राधा कृष्ण मंजरियों को अपने आवेश मूर्ति ही समझते हैं, अपने विलास की आवेश की मूर्ति ही समझते हैं, इससे कोई भेद लगता नहीं है। जैसे आप अपने पांव के ऊपर पांव रखो तो आपको कुछ लगता है कुछ हो गया, अगर कोई आपके पांव के ऊपर पांव रख दे तो कितना वो लगता है बुरा, अभिन्न, आपका एक पांव आपके दूसरे पांव से अभिन्न मानते हो, उसी प्रकार से राधा रानी मंजरियां अपने अभिन्न है, अभिन्न देह, अलग रह नहीं सकती, ना राधा रानी मंजरियों से अलग रह सकती है ना मंजरी राधा रानी से, दोनों के प्राण इसके रहते हैं। इसलिए राधा कृष्ण का जो रसालाप होता है, स्वीट टॉक, राधा कृष्ण जब अकेले होते हैं वो बिल्कुल अलग स्तर पे होता है, तो कोई संकोच नहीं है। और राधा रानी जब श्री कृष्ण, राधा रानी का जो माधुर्य है वो झर झर बह रहा है, समझ लीजिए उनके अंग प्रत्यंग से माधुर्य बह जा रहा है, और श्री कृष्ण उस माधुर्य में एकदम खोए रहते हैं। तो जब निकुंज लीला का अवसान होता है, खत्म नहीं बोलना चाहिए, अवसान होता है, तो मंजरियां भाग से भीतर आती हैं। तो जब भीतर आती हैं तो उन्हें पंचेंद्रियों का सुख प्राप्त होता है। हमें भी जो साधक है उसको भी ये आस्वादन प्राप्त करने की लालसा होनी चाहिए। कैसे होते हैं पंचेंद्रियों का सुख? सर्वप्रथम नेत्रों के द्वारा राधा कृष्ण, तो राधा रानी का रूप दर्शन करके तो श्री कृष्ण एकदम मोहित रहते हैं, और श्री कृष्ण का दर्शन करके राधा रानी एकदम मोहित होती हैं। वो परस्पर का माधुर्य का अनुभव कर रहे हैं और हम युगल के माधुर्य का अनुभव कर रहे हैं। आस्वादन किसका ग्रेटर है? मंजरी का। साथ में सेवा कर रहे हैं, वो तो एक दूसरे का आस्वादन कर रहे हैं परस्पर का, और हम युगल का आस्वादन कर रहे हैं। फिर ये तो हुआ दर्शनानंद, फिर होता है कर्णों के द्वारा आनंद, उनके रसालाप सुन रहे हैं, जो सारी मीठी से मीठी बातें या तीखी से तीखी बातें कर रहे हैं वो सब हम सुन रहे हैं, सब जो ललिता विशाखा के सामने भी नहीं होती वो सुन रहे हैं। फिर उनका अंग गंध जो है, अंग गंध स्मेल जो उनके बॉडी का है, वो हमारे नॉस्ट्रिल्स में प्रवेश कर रहा है। अब ये सोचिए कि जो सनक सनातन सनंदन कुमार चार कुमार हैं, उनको नारायण के ऊपर चरणों में जो तुलसी थी उसका ही फ्रेग्रेंस ऐसा था कि उसकी ओर इतने आकर्षित हो कि ब्रह्मानंद को उन्होंने कूड़े में फेंक दिया, तो खत्म हो, हम भगवान की भक्ति करेंगे। सुनिए आपने ये लीला, चरण तुलसी से, चरण तुलसी में इतना आकर्षण है। तो सोचिए राधा कृष्ण जब संग होंगे, वो भी निवृत्त निकुंज में, निवृत्त कोई भी नहीं, और अंग जो है हर चीज का परम जो है श्री कृष्ण है। सौंदर्य में भी नारायण का अपना सौंदर्य है, राम का अपना सौंदर्य, सबसे सुंदर कौन है? श्री कृष्ण। गंध, अंग गंध भी सबकी अलग अलग, और सबसे फैसिनेटिंग या चमत्कारित्व जो अंग गंध में है वो श्री कृष्ण, साथ में राधा, और वो अंग गंध का हमारे को एक इंद्रिय से वो प्राप्त हो रहा है, एक इंद्रिय से कान से प्राप्त, त्वचा से हम उनकी सेवा कर रहे हैं, त्वचा से सेवा। अब सेवा में कितना आनंद है, जैसे मान लो अब कोई एक बारी कपिल देव एक बारी हाथ में हाथ छू भी दे या हाथ मिला ले कुछ भी हो तो वही स्पर्श नहीं भूलेगा, या सचिन तेंदुलकर या कोई हीरो हीरोइन भी कोई अगर कर दे तो वो स्पर्श भूलेगा नहीं, कोई बड़ा व्यक्ति कर दे तो उसी व्यक्ति को आप छू रहे हैं। अब ये सोचिए कि राधा रानी जो है उनके अंग प्रत्यंग से कांति धारा निकलती रहती है, उसको लावण्य कहा जाता है, लावण्य। श्री कृष्ण है लावण्य सार, सारे जो भगवत स्वरूप उनमें लावण्य होता है, पर श्री कृष्ण क्या है? लावण्य सार, मतलब सबसे श्रेष्ठतम लावण्य जो है, अंग कांति जो है वो श्री कृष्ण से निकलती है। और राधा रानी क्या है? लावण्य सिंधु। राधा रानी का जो लावण्य है, जो अंग प्रत्यंग से कांति निकलती है, वो इतनी आकर्षक है कि श्री कृष्ण उसी में मत हो रहते हैं हमेशा, केवल उस लावण्य, राधा रानी के प्रति नहीं बोल रहे, राधा रानी से जो लावण्य सिंधु निकल रहा है उसी में मत हो रहते हैं, मैडम कंप्लीटली। इसलिए राधा रानी के लावण्य सिंधु को सुरा सिंधु भी बोला जाता है। सुरा मतलब इंटॉक्सिकेशन, लिकर। राधा रानी को पूरी तरह, कृष्ण पूरी तरह मत रखता है वो लावण्य सिंधु। सोचिए राधा रानी का लावण्य सिंधु इतना आकर्षक है कि कृष्ण मत हो जाते हैं, तो राधा रानी जब कोई बोलती होगी तो कृष्ण को क्या होता होगा? और भाई चांस कृष्ण को राधा रानी को छूने का मौका मिल जाए। लगभग 11:30 सुबह 11:30 ये लीला होती है, श्री कृष्ण राधा रानी को छू रहे होते हैं। कुछ मधुमक्खियां आती हैं और राधा रानी डर के मारे श्री कृष्ण के एम्ब्रेस करती हैं, तो राधा रानी छुड़ाने की कोशिश करते हैं, श्री कृष्ण छोड़ते नहीं है, तो फिर किसी तरह अपने को छुड़ाते हैं, वो फिर से कृष्ण उनका एम्ब्रेस करते हैं, तो राधा रानी ललिता सखी कहती है मेरे होते हवा भी राधा रानी का स्पर्श नहीं करते, तुम कैसे करोगे, डांट मारती है। तो श्री कृष्ण उनको छुए होते हैं राधा रानी को, तो छूने से वो इतने ज्यादा कंपन हो जाती है राधा रानी में, इतना आकर्षण है, एक तो लावण्य सिंधु में इतना आकर्षण, फिर शब्द में, उसके बाद त्वचा को छू, महाभाव के कलेवर को छू लिया। राधा रानी और गोपियों में क्या भेद है? महाभाव तो दोनों में है, भेद है कि गोपियों में महाभाव है, राधा रानी महाभाव ही है, सिर्फ राधा रानी महाभाव स्वरूपा है, गोपियों में महाभाव है, जैसे बॉडी में सोल, उस प्रकार से उनमें महाभाव है, पर राधा रानी महाभाव स्वरूपा है। तो वो जो महाभाव कलेवर उनको छूते ही कृष्ण जो है उनके पसीने छूटना, कंपन, अष्ट सात्विक विकार शुरू हो जाते हैं, और गोपियों को उस समय 11:36 पर ऐसा लगता है कि ललिता की डांट से कांप रहे हैं, उनको नहीं पता डांट से नहीं कांप रहे, वो राधा रानी को छुआ होता है इसलिए कंपन जड़ता प्राप्त हो गया, इसलिए उनकी बांसुरी गिरती है, वो चोरी कर लेते हैं, फिर ये फ्लूट स्टीलिंग पास्ट टाइम होता है। तो मैं ये कह रहा था ये जो पंचेंद्रिय का जो आस्वादन है, तो ये जो ये सामान्य नहीं है कि दो लोग बात कर रहे हैं, अरे नहीं भाई, वो महाभाव का सिंधु है, लावण्य सिंधु, सुरा सिंधु, और वो प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, रस स्वरूप श्री कृष्ण, उनका रसालाप है, उनका छूना है। तो कितनी इंद्रियों से आस्वादन हुआ? 1, 2, 3, 4 और 5वां जो श्री कृष्ण ने तामुल लिया, मंजरियां इतने एक्सपर्टली, इतने एक्सप्रेशन इस प्रकार से राधा रानी के मुख में तांबुल डालते हैं कि कृष्ण आकर्षित हो जाएं, वही तांबुल खुद खाने के लिए राधा रानी के मुख से इस प्रकार से सेवा करती है एक्सपर्ट। तत्राति दक्षा, ये दक्ष है मंजरी, गुरु जो है वो केवल वो साधु मुनि स्वरूप नहीं है बाबा, वो दक्ष है, ऐसे तांबुल दे रहे हैं कि कृष्ण आकर्षित हो जाएं। फिर कृष्ण वो उनसे तांबुल लेते हैं, फिर वो वापस मिलता है किसी प्रकार से। तो जब श्री कृष्ण को तांबुल अर्पण किया या कुछ भोजन दिया जाता है, वो जब भोजन राधा रानी को प्राप्त होता है श्री कृष्ण का अधरामृत, तो क्या है, मोहन अधरामृत है, उसमें इतनी मोहिनी शक्ति होती है, मदन मोहन का मोहन अधरामृत, उसमें इतनी मोहिनी शक्ति होती है, क्यों? क्योंकि वो विश्व मोहन है और वो मदन मोहन है, परंतु इतनी मोहिनी शक्ति होती है कि मदन मोहन मोहिनी भी उससे मोहित हो जाती है। वे जो विश्व मोहन है पूरे विश्व को मोहित करते हैं, पर जब राधा रानी के साथ होते हैं तब वो मदन मोहन होते हैं, और जो उनका अधरामृत होता है वो मदन मोहन मोहिनी को भी मोहित कर देता है। मदन मोहन को कौन मोहित करती है? राधा रानी, मदन मोहन मोहिनी। वो जो अधरामृत होता है जब राधा रानी लेती है, उन्हें यह समझ नहीं आता कि वो अधरामृत लेती है कि कृष्ण का साक्षात अधर सुधर स्पान कर रही है, कि चुंबन कर रही है कि अधरामृत लेने में, समझ ही नहीं आता, इतना आकर्षण होता है श्री कृष्ण के अधरामृत में। ये आकर्षण श्री कृष्ण के अधरामृत में है, और फिर राधा रानी ने लिया और उनका अधरामृत फाइनली मिला मंजरी को, तो वो एक इंद्री का आस्वादन है। ये दूसरा 30-34 तो इस प्रकार से पंचेंद्रिय का आस्वादन होगा तो मंजरी कई बार आस्वादन के अंत की वजह से ही बेहोश हो जाती है, सामान्यता नहीं होती है क्योंकि आस्वादन इतना ज्यादा हो जाता है कि बियॉन्ड कंट्रोल बेहोश हो जाती है। जैसे साहिल ने पूछा था कि पिछली बार की मंजरियां इतना सब हो रहा होता है तो मंजरियां कैसे सहन करती हैं, सहन इसलिए मंजरियां सेवा कैसे कर पाती हैं, वो खुद क्यों नहीं बेहोश हो जाती, जब राधा रानी खुद हो गई मूला शक्ति बेहोश बेवश हो जाती हैं और श्री कृष्ण स्वयं कितनी बारी मदहोश हो जाते हैं तो मंजरी क्यों नहीं होती, क्योंकि वो बनी सेवा रस के लिए है, वो सेवा करने के लिए ही बनी है इसलिए वो मदहोश नहीं होती, सेवा रस की ही मूर्ति है, वो सेवा रस से ही उनका सब कुछ गठित है इसीलिए वो बनी है। अब निकुंज पहले बंशी बजी तो वो विवशांगी हो गई, फिर रास्ते में जाने की सेवा की जरूरत है कि पकड़ के लेके जाने डर ना लगे, और अब कुंज में पहुंच गई तो मंजरी क्या बोलती है, मदन मोहन तुमने तो वंशी बजा दी उसके बाद तुम्हें पता है इनका क्या हाल हुआ, तुम तो अपना काम कर रहे थे उसके बाद सारा काम करना किसको पड़ता है, तो पता मैं कैसे करके लेके आई हूं, धमकी दे रही है वो, उसके बाद साथ में हाथ भी मिला रही है, तुमको यही प्रार्थना करनी है कि वो दिन कब आएगा कि मैं भी इस प्रकार से धमकी दे पाऊं हाथ मिला पाऊं, तो हम चेष्टा करें कि जो ग्रंथ हैं अच्छी तरह इनको पढ़ें, भाव परिपाटी सीखें, तो कई बार जो हम पढ़ते हैं वो इतना जल्दी अंदर जाता नहीं है कि कृष्ण कृष्ण के ग्रंथ जो हैं चिन्मय है, अप्राकृत वस्तु ना हो प्राकृत इंद्रिय गोचर, जो अप्राकृत वस्तु स्पिरिचुअल है वो प्राकृत नैनो नेत्रों से या मन से नहीं समझी जाती, तो जो हम श्रवण करें, श्रवण करने से सबसे श्रेष्ठतम अंग है भक्ति में, जब हम श्रवण करते हैं तो समझ आना शुरू होती है चीज, हाँ ये ऐसे ये ऐसे, तो केवल तो अध्ययन भी करें श्रवण भी करें और सबसे महत्वपूर्ण सेवा करें, सेवा की मूर्ति है, जितना सेवा हमारे ग्रॉस चीजों को हम एंगेज करेंगे, अपना बॉडी हमारी ग्रॉस अपनी है ना, मैं की, जैसे धन किसका है मेरा मैं का, जैसे बॉडी किसकी है मेरी मैं की, तो जितना धन मन जो भी धन तन लगेगा उस वो होएगा तो मन प्रॉपर लगना शुरू होगा, परंतु हमने ये सारी चीजें एक के बाद एक नहीं करनी है कि ऐसे करेंगे तो ना ना सारी इकट्ठी करनी है, अभ्यास से तो कौन से है? दोनों का अभ्यास करना है साथ में वैराग्यम चक्र, चारों चीजें साथ में करनी, दो नहीं करनी और दो करनी, इसमें से अगर कोई चीज मिसिंग होगा तो प्रॉपर बैलेंस में कमी आएगी। कोई प्रश्न नहीं, देखो ये फोटो के अंदर ही बहुत रहस्य छुपा हुआ है, ये कृष्ण जिस प्रकार से हैं ये है लगभग 12:24 पे ऐसा शुरू होता है, दोपहर में 12 बजे निकुंज में लीला होती है, फिर अवसान होता है, फिर हंसी मजाक होता है, कृष्ण गोपियों को बोलते हैं बोलो बोले इसे पूछो कहाँ पे थी, जैसे राधा रानी को शर्म आ रही लज्जेश्वरी हैं लज्जावती हैं, जैसे कृष्ण हैं तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अन्य सभी फिर राधा रानी गुणगान करना शुरू, आपका देह ऐसा है आपके देह में ये गुण है, तो इस प्रकार से गुणगान होता है सुबह 12 से 12:24, उसके बाद वन भ्रमण होता है, 6 अलग अलग प्रकार के वन होते हैं, तो जब वहां से निकलते हैं तो धूप होती है कभी कभी अलग, जैसे पेड़ तो है ही है परंतु जब धूप होती है तो कृष्ण अपना जो मुकुट है टेढ़ा कर लेते हैं ताकि राधा रानी के ऊपर धूप ना आए, ये अपने मुकुट से धूप को आने से रोक रहे हैं, ये फोटो में है कि राधा कृष्ण केवल ऐसे नहीं कि चल रहे हैं, वो साथ में सेवा कर रहे हैं कृष्ण और श्री कृष्ण से हाथ हाथ रख रहे होते हैं राधा रानी पे, तो राधा रानी साइड में जैसे करती रहती है, ये भी इसमें अनएक्सप्लेन फीचर तो हमारे को जिस प्रकार से लीला का अध्ययन चिंतन श्रवण होगा उस वजह से हम हर समय रह सकते हैं चिंतन में, कहीं किसी को क्या पता आप क्या कर रहे हो अब बस में जा रहे हो आपको पता आप कौन सी बस में जा रहे हो, अब गाड़ी में किसी को बड़ा अलग गाड़ी मानस गाड़ी में अलग प्रकार से सेवा हो रही है, अब कीर्तन हो रहा है अब किसी को क्या पता कीर्तन में कोई क्या कीर्तन कर रहा है, कोई क्या कीर्तन कर रहा है कोई तो अगर हमको लीला का अच्छी तरह से चिंतन होगा तो और हमारे चित्त में बैठे तो सेवा करना है। चित्त में तभी बैठे जितना चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध कैसे होगा? ग्रॉस लगे और कृपा हो, इससे शुद्ध होगा। जीवन में सिद्धि हो ना हो, इसी सेवा भावना को समर्पित है जीवन। ये तो इतना बड़ा तो हमारे को लेके चलना होगा जीवन, इस भावना को समर्पित है जीवन। प्रॉपर बैलेंस नहीं है लाइफ में, एक ही है सब कुछ, इसी में सब कुछ है। ये इसी भावना को समर्पित है, इस भाव को प्राप्त करने की। लोग खुश रहना चाहते हैं तो वो ब्रजवासी ही रहते हैं, तो ब्रजवासी तो होना पड़ेगा। वस्तु प्राप्ति में लालसा की तीव्रता का भेद है, बस हमें कितनी लालसा है उसमें, कितनी ईगरनेस। कुछ नहीं चाहिए भगवत प्राप्ति के, सिर्फ लालच चाहिए, मैं कितना लालची हूं। तो हमें केवल राधा या कृष्ण का चिंतन नहीं करना, या राधा व कृष्ण का चिंतन नहीं करना, हमें सखी राधा कृष्ण का चिंतन करना है विद सखी। ऐसा नहीं कि टोटल तीन ही लोग हैं, मैं राधा और कृष्ण, ना 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 ना। लीला के लिए तो बहुत सखी चाहिए, राधा कुंड में इतनी सखी है, होली लीला हो रही है, निकुंज में हो अभी 12 से 12-24 में क्या है, आज सखी सभी बैठी हुई है, सभी मजाक कर रहे हैं। और हमारे सबसे प्रमुख आचार्य कौन है इसमें? रूप रति मंजरी है, ठीक है ना। तो रूप रति मंजरी मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी और रूप गोस्वामी, ये हैं रति मंजरी। इन्होंने ग्रंथ लिखा है मना शिक्षा, इसमें गिनती के जरा से श्लोक है। तो अपने मन को सबसे पहली प्रथम शिक्षा क्या देनी है जिससे सिद्धि प्राप्त हो, इस बात को हम जान लें। मना शिक्षा, हे मेरे प्यारे भैया मन, करना पड़ता है काम निकालना है मन से, तो सारा काम तो मानस संग है, मन को ही तो लगाना है। हे मेरे प्यारे भैया मन, मैं तुम्हारे चरणों को पकड़कर नम्रता पूर्वक प्रिय वचनों द्वारा ये प्रार्थना करता हूं। हे मेरे प्यारे भैया मन, मैं तुम्हारे चरण कमलों को पकड़कर नम्रता पूर्वक प्रिय वचनों द्वारा ये प्रार्थना करता हूं। क्या प्रार्थना? कि तुम अपने अहंकार दंभ को त्याग के निरंतर अपना मन किस किस में लगाए, को सीरियल ऑर्डर में बता रहे हैं, किस किस में मन लगाए रखो। अपना मन गुरुदेव में, ब्रज धाम में, ब्रजवासियों में, वैष्णवों में, ब्राह्मणों में, भगवान नाम में तथा किशोर किशोरी में अपने मन को निरंतर उनमें रति रखो और बढ़ाते रहो। ये नहीं बोला सीधा सीधा सबसे पहले राधा कृष्ण में या भगवान नाम, ये सबसे एंड में आए हैं, नोट किया आपने? किशोर किशोरी सबसे एंड में आए, उससे पहले भगवान नाम। और यही हम अच्छी तरह नॉलेज ना होने की वजह से सारी चीजें तो हम गलत कर देते हैं। अरे हम तो किशोर किशोरी के, वो तो ठीक है, उससे पहले भी कुछ बताया गया है, कहां पे पूरी तरह रति अपनी बढ़ाओ। हर सर्वतो भावेन दंभ का परित्याग कर, दंभ इस अहंकार कुटिलता, मन में कुछ और है मुझसे कुछ और बोल दें। मन है शिक्षा, ये पहला श्लोक है, प्रथम श्लोक। और इसमें प्रैक्टिकली जो हम अपने आप को हमारे करना चाहिए, जो कि बहुत आसान है, ये घड़ी, ये हर थोड़ी देर बाद 12 पे आ जाती है, 7, 8, 9, 10, और जैसे ही 12 पे आए एक मिनट के लिए अपने आपको याद दिलाए, अपने आपको स्मरण करें मैं कौन सी क्या मंजरी हूं, मेरा क्या नाम है, अपने सिद्ध स्वरूप का स्मरण करें हर घंटे, प्रत्येक घंटे वो लगा लें, टिंग टोंग आता है ना अलार्म, टिंग टोंग अपना स्मरण करना शुरू हो जाए। दिन में अगर 6 घंटे सोने तो 18 बार तो करेंगे इसे स्मरण, और उसको पूरे घंटे भर करने की कोशिश करें, कम से कम वो शुरू के 1 मिनट तो करें इसे हर घंटे के प्रत्येक प्रारंभिक मिनट। ट्रेन में हो तब भी कर सकते हैं, टॉयलेट में हो तब भी कर सकते हैं, सारा काम तो यही है मन का है। खाते सोते सुनिए नाम, कहीं पे भी बैठो नाम ले सकते हो, नाम मन से लेना। ये मन से किया हो यज्ञ है वो सबसे शक्तिशाली होता है। यज्ञ 12 प्रकार के होते हैं, जो मन से हम चिंतन करते हैं राधा कृष्ण का, वो मानस यज्ञ होता है। जैसे हम अपनी इंद्रियों को विषयों तक सेंस ऑब्जेक्ट से नहीं लेके जाते, ये भी एक प्रकार का यज्ञ, गलत चीजों की ओर आकर्षित ना होना, ये यज्ञ है रोकना। तो ये तो करना ही होगा हमारे को, 24 घंटे नॉन स्टॉप तो पता नहीं कब होगा, ये तो हम जॉब में हो, पढ़ाई में हो, इवन पेपर भी दे रहे हो उसमें भी कर सकते हैं, 1 मिनट ट्यूशन भी पढ़ा रहे हो उसमें भी स्मरण कर सकते हैं। इस संबंध में अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।